नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में किसानों के योगदान की सराहना की। कहा, किसानों के प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिक राष्ट्रीय चेतना के जीवंत स्तंभ और सामूहिक साहस के प्रतीक। चीन ने ईरान की स्थिरता के लिए अपना समर्थन दोहराया। संप्रभु देशों के आंतरिक मामलों में अमरीका के हस्तक्षेप को खारिज किया। थाईलैंड में रेल दुर्घटना में 22 लोगों की मौत और 30 लोग घायल। और राजकोट में भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान राष्ट्र निर्माण में सशक्त भागीदार हैं और उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए अथक प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन के नई दिल्ली स्थित आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में कहा कि पोंगल पर्व जीवंत तमिल संस्कृति और प्रकृति के साथ जुड़ाव का उत्सव है।
हमारे किसान राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी है। उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत मजबूती मिल रही है। केंद्र सरकार भी किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर लगातार काम कर रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पोंगल प्रकृति, परिवार और समाज के साथ संतुलन स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करता है।
हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। साथ ही ये पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तमिल संस्कृति समूचे देश और मानवता की साझा विरासत है। उन्होंने कहा कि तमिल संस्कृति में किसानों को जीवन का आधार माना जाता है। इस बीच आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति सर्दियों के अंत और लंबे समय के दिनों की शुरुआत का प्रतीक है।
तिलवत् स्निग्धं मनोऽस्तु वाण्यां गुणवन् माधुर्यं तिलगुड लड्डुक्वत संबंधे अस्तु सुवृत्त तत्त्वम्। मकर संक्रांति एक प्रमुख भारतीय पर्व है। ये त्योहार सूर्य के धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मकर संक्रांति को उत्तरायण की शुरुआत भी माना जाता है। आज ही के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर गमन करता है। मान्यता है कि आज के दिन किए गए दान, जप और स्नान का विशेष महत्व है। आज के दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और तिल, गुड़, खिचड़ी, वस्त्र आदि का दान करते हैं। मकर संक्रांति का कृषि क्षेत्र में भी अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इस समय रबी की फसल पककर तैयार होने लगती है। ये पर्व समाज में भाईचारे और मेल मिलाप का संदेश देता है। देश के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति अलग अलग नामों से मनाई जाती है। तमिलनाडु में इसे पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, असम में माघ बिहू और गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है। आज के दिन राजस्थान और गुजरात में विशेष रूप से पतंग उड़ाने की परंपरा है।
चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे।
इस तरह मकर संक्रांति न केवल एक धार्मिक पर्व ही है, बल्कि ये प्रकृति, कृषि और सामाजिक समरसता का प्रतीक भी है। ये त्योहार हमें दान, सद्भाव और सकारात्मकता का संदेश देता है।
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू, लोहड़ी समेत अन्य पर्वों की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हैं।
इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और अन्य त्योहारों की भी उमंग है। मैं भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल भाई बहनों को पोंगल की और सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि पूर्व सैनिकों का अटूट साहस प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस और सशस्त्र सेना ध्वज दिवस बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर ही नहीं बल्कि उन्हें समर्थन देने का भी अवसर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पूर्व सैनिक राष्ट्रीय चेतना के जीवंत स्तंभ, सामूहिक साहस के प्रतीक और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि पूर्व सैनिक राष्ट्र निर्माण के हर मोर्चे पर योगदान देते हैं और अनुशासन, नेतृत्व और साहस जैसे गुणों से समाज का मार्गदर्शन करते हैं।
साथियों, आप सभी केवल सर्विस से रिटायर हुए एक सैनिक मात्र नहीं है, आप हमारी राष्ट्रीय चेतना के जीवंत स्तंभ हैं। आप हमारे सामूहिक साहस के प्रतीक और हमारी भावी पीढ़ियों के आप प्रेरणा स्रोत हैं। 20 साल की उम्र के आसपास जब आप लोगों ने यह निर्णय लिया होगा कि आपको आर्म फोर्सेज में जाना है, तो आपने उस समय केवल एक पेशा नहीं चुना था, एक सैनिक के रूप में आपने एक संकल्प लिया था, यहाँ व्यक्ति स्वयं को पूर्णतः राष्ट्र के लिए समर्पित कर देता है।
श्री सिंह ने पूर्व सैनिकों के जीवन को गरिमापूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर देश के संकल्प और संयम का एक निर्णायक प्रदर्शन था जो सशस्त्र बलों की नैतिक शक्ति और पेशेवर उत्कृष्टता को दर्शाता है। जनरल द्विवेदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी गणतंत्र दिवस परेड शिविर को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट एकता और अनुशासन के आदर्श वाक्य का उदाहरण है।
ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे अनुशासन और दृढ़ संकल्प के साथ प्राप्त न किया जा सके। ड्रोन प्रशिक्षण एनसीसी में नवीनतम तकनीक का समावेश है। ये पारंपरिक प्रशिक्षण से आगे बढ़कर कैडेट को आधुनिक चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करेगा। ये जानकर प्रसन्नता होती है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वय से राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी युवा आपदा मित्र योजना के अंतर्गत 28 राज्यों के 315 जिलों में लगभग 94,400 कैडेट को प्रशिक्षण दे रहा है।
अंडर द युवा आपदा मित्र स्कीम।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज सुबह अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए। श्री शाह ने अहमदाबाद के नारनपुरा इलाके में गुजरात आवास बोर्ड की पुनर्विकास योजना के अंतर्गत सूर्य अपार्टमेंट सेक्शन 2 की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन में मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाए रखने में अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की भूमिका सहित समकालीन संसदीय मुद्दों पर व्यापक रूप से चर्चा होगी।
3 दिन के इस सम्मेलन में 60 से अधिक राष्ट्रमंडल देशों और अर्ध स्वायत्त संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे। इसका उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र के विभिन्न स्वरूपों के बारे में ज्ञान और समझ को बढ़ावा देना और संसदीय संस्थाओं का विकास करना है। सम्मेलन के दौरान संसद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उपयोग, प्रतिभागियों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीन विचारों को साझा करने, सांसदों पर सोशल मीडिया के प्रभाव, संसद के बारे में जनता की समझ को बढ़ाने और सांसदों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सहित विभिन्न विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन की बैठक के समापन के बाद लोकसभा अध्यक्ष यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष लिंडसे होयल को इसकी अध्यक्षता सौंपेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
इस सम्मेलन से अलग लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज केन्या की संसद के अध्यक्ष डॉ मोसेस मासिका वेतनगुला के साथ चर्चा की। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि भारत अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिष्ठित एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास संस्थान की प्रगति की समीक्षा के दौरान उन्होंने ये घोषणा की। उन्होंने संस्थान में पोंगल समारोह में भाग लिया। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अरावली पर्वतमाला में पारिस्थितिक संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण और अवैध खनन को रोकने के लिए अरावली की लगभग 97 किलोमीटर राजस्व भूमि को स्थायी संरक्षित वन घोषित किया गया है। नई दिल्ली में अरावली परिदृश्य के पारिस्थितिक पुनर्स्थापन पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री यादव ने प्रधानमंत्री के देश भर में 26 करोड़ हेक्टेयर खराब भूमि के पुनर्स्थापन के मिशन पर प्रकाश डाला। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और पशुधन को बढ़ाने के लिए पशु नस्ल संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में आयोजित नस्ल संरक्षण पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। सेना ने कल रात जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले में सीमा पार से आए कई पाकिस्तानी ड्रोन पर गोलीबारी की। कल शाम करीब 7 बजे ये पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में राजौरी जिले के चिंगुस इलाके में डुंगा गाला में घुस आए थे। ड्रोन कुछ देर माजकोट में दिखाई देने के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर लौट गए। निपा वायरस से संक्रमण के संदेह में दो और व्यक्तियों को कोलकाता के बेलीघाटा आईडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार ये मरीज उन दो नर्सों के संपर्क में आने के बाद भर्ती हुए हैं, जिनकी पहले ही वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन ने ईरान में स्थिरता के प्रति अपने समर्थन को दोहराया है। चीन ने कहा है कि वह संप्रभु देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग या धमकी का लगातार विरोध करता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
ईरान के साथ कारोबार कर रहे देशों पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने पर श्री जियान ने कहा कि टैरिफ को लेकर चीन का रुख यथावत है। उन्होंने कहा कि चीन अपने वैध तथा कानूनी अधिकारों और हितों की दृढ़ता से रक्षा करेगा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासचिव से अपील की है। इस अपील में अमरीका पर ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और सैन्य कार्रवाई करने तथा हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। ईरान के स्थायी प्रतिनिधि ने ईरान में प्रदर्शनों के संबंध में अमरीकी राष्ट्रपति के हाल के बयानों पर चिंता व्यक्त की है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि ऐसे बयान ईरान की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। ईरान ने कहा है कि अमरीका के बयान अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
बैंकॉक से थाईलैंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ओर जा रही एक यात्री रेलगाड़ी आज गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में 22 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक घायल हुए हैं। थाईलैंड के परिवहन मंत्री ने बताया कि दुर्घटना के समय रेलगाड़ी में लगभग 195 यात्री सवार थे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला राजकोट में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में एक विकेट पर 79 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। मौसम विभाग ने कल तक पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन तक दिल्ली हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने का भी अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में किसानों के योगदान की सराहना की। कहा किसानों के प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिक राष्ट्रीय चेतना के जीवंत स्तंभ और सामूहिक साहस के प्रतीक। चीन ने ईरान की स्थिरता के लिए अपना समर्थन दोहराया। संप्रभु देशों के आंतरिक मामलों में अमरीका के हस्तक्षेप को खारिज किया। थाईलैंड में रेल दुर्घटना में 22 लोगों की मौत और 30 लोग घायल और राजकोट में भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।